नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा ने बिना किसी विशेष जानकारी के आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित किया। उन्होंने कहा भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखा जाना अस्वीकार्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशिया को सुदृढ़ करने और वास्तविक शांति स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा करने की आवश्यकता जताई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की विस्तृत संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ ही घंटों में मतदान शुरू। नहाय खाय की परंपरा के साथ छठ पूजा की शुरुआत। और टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके जोड़ीदार पुर्तगाल के फ्रांसिस्को केब्राल पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने कनाडा सरकार से इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने हमले को बेहद चिंताजनक बताया है। आज सुबह कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कनाडा में आतंकी गुटों को राजनीतिक शरण दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने बिना कोई विशेष जानकारी दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखा जाना अस्वीकार्य है। कैनबेरा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के बारे में पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमले भारतीय समुदाय के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा और सम्मान के हकदार हैं, भले ही उनकी आस्था और संस्कृति कुछ भी हो। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की 15वीं औपचारिक वार्ता में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत राजनीतिक संबंधों, सुदृढ़ रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग, विस्तारित व्यापार, अधिक गतिशीलता और गहरे शैक्षिक संबंधों में परिलक्षित होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत धर्म की पवित्र भूमि है और हर युग में यहां महान गुरु और रहस्यवादी हुए हैं। नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम का ज्ञान प्राप्त करना इतिहास की अद्वितीय घटना है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, लेकिन बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करने के लिए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार अभियान तेज हो गया है। राज्य में कुल 4,140 उम्मीदवार 288 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज से 14 नवम्बर तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कई रैलियों को संबोधित करेंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राज्य में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा के दोमचाची में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची और लोहरदगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हजारीबाग के मांडू और रांची के कांके में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1 अरब करोड़ रूपये से अधिक राशि जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 31 प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड के देवघर में अंबर लकड़ लकड़ा को नया पुलिस अधीक्षक बनाने पर सहमत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड और न्यायमूर्ति GB पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की खंडपीठ ने 22 मार्च के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ घोषित किया था। शीर्ष न्यायालय की इस व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसे से काम करते रहेंगे और सरकार को शैक्षिक मानक निर्धारित करने का अधिकार होगा। इससे पहले अप्रैल में शीर्ष अदालत की पीठ ने विवादास्पद निर्णय पर रोक लगा दी थी। इसमें भी न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्र शामिल थे। पीठ ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला है और सरसरी तौर पर उसका दृष्टिकोण सही नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मदरसा शिक्षा अधिनियम उस सीमा तक संवैधानिक है जहां यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विपरीत 12वीं कक्षा के बाद फाजिल और कॉमिक डिग्रियों के संदर्भ में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देने में गलती की कि मदरसा कानून को इस आधार पर निरस्त किया जाए कि वह धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुने अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। मतदान अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 10 बजे शुरू होगा। श्री ट्रंप ने मिशिगन में भाषण के साथ अपना प्रचार अभियान पूरा किया, जबकि सुश्री हैरिस ने पेनसिल्वेनिया प्रांत में भाषण के साथ अपना अभियान समाप्त किया। श्री ट्रंप ने प्रचार अभियान के दौरान सीमा सील करने और कई ट्रिलियन डॉलर मूल्य के प्रस्तावित कर वापस लेने जैसे वायदे किए। सुश्री हैरिस ने चुनाव प्रचार में गर्भपात के अधिकार का समर्थन किया और कामकाजी परिवारों के भोजन तथा आवास की लागत में कमी लाने के वायदे किए। केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में उपभोक्ता खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल तथा आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई औपचारिक स्थितियों के प्रति सटीक और सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ फिक्की के 18वें वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों के स्तर की होनी चाहिए। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है। सूर्योपासना के 4 दिन के इस पावन अनुष्ठान में कल देर शाम खरना का विधान संपन्न होगा। इसके बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 7 नवंबर बृहस्पतिवार की संध्या अस्ताचलगामी सूर्य, शुक्रवार प्रातः उदीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही महापर्व का समापन होगा। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण आमतौर पर पावन नदियों के तट पर संपन्न होता है। विभिन्न सूर्य मंदिरों के छत घाटों पर भी अर्घ्य दिया जाता है और पूजा संपन्न होती है। बिहार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु औरंगाबाद के देव, पटना के ओलार्क और नालंदा जिले के अंगारी धाम सूर्य मंदिर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। जानी मानी गायिका शारदा सिन्हा नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतर स्वस्थ और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मौसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके जोड़ीदार पुर्तगाल के फ्रांसिस्को केब्राल पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांसीसी जोड़ी आर्थर केजाक्स और हेरल्ड मायो मुकाबले से हट गई। क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला बृहस्पतिवार को मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज और फ्रांस के एडोर्ड रोजर वासलिन के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई औपचारिक स्थितियों के प्रति सटीक और सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के 18वें वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन में यह बात कही। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है स्वस्थ भारत, विकसित भारत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।